सुबह सुबह शगुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने व्हाइट लूज शर्ट के नीचे ब्लैक डेनिम स्कर्ट पहना था। शगुन के बाल परफेक्टली स्ट्रेट किए हुए थे और साथ में डायमंड स्टड्स उसके लुक में चार चांद लगा रहे थे। उस वक्त वो उस ऑफिस लुक में काफी प्रोफेशनल नजर आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और फिर खुद को गौर से देखने लगी। कोई हक नहीं है तुम्हें इतना खूबसूरत लगने का, बोलने के बाद उसने अजीब सा चेहरा बनाया और फिर आगे कहा, यक, कितना चीप डायलॉग है। खुद को देखते हुए उसे कल मंदिर में मिली उस आंटी की याद आई। उसने कहा था कि मैं दिखने में ठीक ठाक लगती हूँ, क्या सच में ऐसा है? शगुन ने खुद को आईने में गौर से देखा। अच्छी ही तो दिख रही हूँ, उसने कहा। फिर वो बाहर आई। वो एक रेंटेड हाउस में रहती थी। वो एक दो मंजिला बड़ा घर था जिसका पूरा ऊपरी हिस्सा उसने रेंट पर ले रखा था। उसने उसे काफी खूबसूरती से सजा रखा था। वो तैयार होकर नीचे आई तो उसे घर के मकान मालकिन की बेटी दिखी। उसने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया, हे आयशा, जरा इधर तो आना। आयशा लगभग 19 साल की थी। शगुन के बुलाने पर वो उसके पास आई। पास आते ही वो उसकी तरफ खोई हुई नजरों में देखने लगी और फिर चहकते हुए बोली, आपके स्टाइल का कोई जवाब नहीं है शगुन दी, कपड़ों से लेकर हर एक चीज तक ब्रांडेड होती है। आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? मेकअप भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती हो आप? काफी महंगे होते होंगे ना? मैं हर एक चीज ब्रांडेड यूज करती हूँ। तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद है? उसने पूछा। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। यू लुक्स लाइक एन एंजल। मेरे पास बहुत से एक्स्ट्रा कपड़े और मेकअप का सामान पड़ा है जिन्हें मैंने एक बार भी यूज नहीं किया। तुम चाहो तो उन्हें रख सकती हो। उसकी तारीफ करने पर शगुन ने उसे अपना सामान देने की बात कही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर शाम को मिलते हैं। अभी तो आप ऑफिस जाने का वक्त हो गया होगा ना? शगुन ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे बाय बोलने के बाद वो अपनी गाड़ी में ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। आयशा की तारीफ करने के बाद वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। कुछ ही देर में शगुन वहां की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी के आगे थी। वो गाड़ी से बाहर निकली और बिल्कुल वहां के बॉस की तरह वॉक करते हुए जा रही थी। रास्ते में उसे जो भी एम्प्लॉयज मिल रहे थे वो उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। किसने सोचा था कि पापा की दी लग्जरी लाइफ से अलग होने के बाद भी मैं एक अच्छी लग्जरियस लाइफ बिताऊंगी। इंसान में आगे बढ़ने का जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकता है, शगुन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और वहां के बॉस के केबिन में चली गई। उसे वहां देखते ही वहां का बॉस मिस्टर शुभ चौधरी मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। वो शगुन से उम्र में कुछ ही बड़ा होगा। उसके चेहरे पर सेट की हुई गहरी दाढ़ी थी। वो हाइट और हेल्थ में अच्छा था। उसका लुक उसकी पर्सनैलिटी को काफी सूट कर रहा था, बिल्कुल किसी यंग बिजनेसमैन की तरह जो दिखने में काफी हैंडसम था। मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था, वो उठकर शगुन के पास आया। कल मीटिंग में तुमने कमाल ही कर दिया। मुझे लगा मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारे रहते ऐसा कभी नहीं होता। ब्रिलियंट शगुन, जब तुम मुझे अच्छे से जानते हो तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, शगुन ने जवाब दिया। शुभ ने भी उसकी बात पर हामी भरी। वो शगुन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी शगुन दो कदम पीछे हट गई। तुम भूल रहे हो हम ऑफिस में हैं। मैं नहीं चाहती यहाँ किसी को पता चले कि हम रिलेशन में हैं, वरना लोग मेरी सक्सेस और टैलेंट को कम आंकेंगे। वो ऐसा समझेंगे कि मैं इसलिए आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, शगुन ने सख्त आवाज में कहा। हाँ ठीक है, कल तुमने बहुत काम किया था, अब थोड़ा आराम कर लो। मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी, ऑफिस है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, शाम को डिनर पर मिलते हैं, शगुन ने इतना ही कहा और फिर वहां से चली गई। वो अपने ऑफिस के बॉस मिस्टर शुभ चौधरी को पिछले 2 साल से डेट कर रही थी। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो वो वहां की हेड डिजाइनर को असिस्ट करती थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और आगे बढ़ने के जज्बे से वहां के हेड मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली थी। शगुन के प्रोफेशनलिज्म ने शुभ का भी दिल जीत लिया। उसके जाने के बाद शुभ वहां चेयर पर बैठा, तभी उसके पास एक कॉल आया। हेलो मिस्टर जिंदल, मैं आपको कॉल करने वाला ही था, यह हमारा पहला ज्वाइंट वेंचर होने वाला है तो मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, शुभ ने कॉल उठाते ही कहा। जी हाँ, तभी मैंने कॉल किया था। मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में आप मिस गोयंका को भी इन्वॉल्व करें, शी इज सच अ जेम और ये कल उन्होंने मीटिंग में प्रूव कर दिया। सच कहूँ तो उन्हीं की वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी पहले जो भी मीटिंग हुई थी मुझे उसमें प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी, सामने से मिस्टर जिंदल ने कहा। उनकी बात सुनकर शुभा थोड़ा मूड ऑफ हो गया। उसने फिर भी खुद को सामान्य जाहिर करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इस प्रोजेक्ट को शगुन ही हेड करने वाली है, मीटिंग में मिलते हैं। मिस्टर जिंदल से बात करने के बाद शुभ शगुन के बारे में सोच रहा था। उसे मिस्टर जिंदल का शगुन की तारीफ करना पसंद नहीं आया, पर साथ ही शुभ के प्यार के चलते वो कुछ कह भी नहीं सका। ये लड़की सच में बहुत टैलेंटेड है, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझसे मेरी ही कंपनी ना टेक ओवर कर ले, पर ये ऐसा नहीं करेगी, उसके पापा के पास मुझसे भी कहीं ज्यादा पैसे हैं। शगुन के पिता मिस्टर नवीन गोयंका का ख्याल आते ही शुभ की टेंशन पल में दूर हो गई और वो सब भूलकर अपने काम में ध्यान लगाने लगा। मुंबई में मित्तल मेंशन में आकाश मित्तल टेंशन में इधर उधर वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह उन्हें परेशान देखकर उनकी पत्नी वाणी उनके पास आई।
मैं देख रही हूँ कल रात से आप परेशान हैं, सब ठीक तो है ना? कहते हुए उसने चाय का कप मिस्टर मित्तल के हाथ में पकड़ा दिया। यही तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, सब ठीक है या नहीं। तुम्हें पता है कल रात अनुभव ने किसी क्लब में 5 लाख रुपए पे किए थे। आज से पहले उसने इतना खर्चा नहीं किया, कोई और जगह होती तो फिर भी सोचता, लेकिन क्लब जैसी जगह पर। वो बोल रहे थे तभी वाणी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे, अपने इकलौते बेटे की हर एक चीज पर नजर रखते हैं। बेचारे को पहले ही खुद से दूर भेज दिया, इतने सालों से ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देखी, यहाँ आता है तो भी एक दो दिन के लिए। अब बस भी कीजिए मेरे बेटे के साथ अत्याचार और उसे बुलाकर उसका एम्पायर सौंप दीजिए। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं, जो कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। मुझे अनुभव से बात करनी थी लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा। हाँ तो वो क्यों कोई पिक करेगा, उसे अच्छे से पता है कि फोन उठाते ही आप फिर से भी सवाल जवाब करने शुरू कर देंगे, इतने पैसे कहाँ लगाए क्यों लगाए, वाणी ने मुंह बनाकर कहा। फिजूल खर्ची गलत आदत होती है, आपके पास ज्यादा पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बेवजह हर कहीं पर उड़ाएं, इतने पैसों से बहुत जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। आपका ज्ञान फिर से शुरू हो गया, वाणी ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने लगी। उसके जाने के बाद आकाश जी ने फिर अनुभव को कॉल लगाया, इस बार अनुभव ने उनका फोन पिक कर लिया था। हेलो अनी बेटा, तुम ठीक तो हो, उन्होंने उनके कॉल उठाते ही पूछा। हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैं कल रात कॉल पिक नहीं कर पाया, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपको नहीं बता पाया, एक्चुअली मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अनुभव की आवाज़ में बहुत नरमी और विनम्रता थी। उसके बात करने के लहजे को देखकर उसके पास बैठा गतिक अपना मुंह पकड़कर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अनुभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा।
नहीं बेटा कोई बात नहीं, वहाँ सब ठीक तो है ना, कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, आकाश जी ने डायरेक्ट पूछने के बजाय बात को घुमा फिरा कर पूछा। अनुभव उनके कहने का मतलब बखूबी समझ रहा था, उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं है, आपको तो पता चल गया होगा कि मैंने कल रात कार्ड से 5 लाख रुपए पे किए थे, आप चिंता मत कीजिए मैं अपनी सैलरी से आपको लौटा दूंगा। अरे नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे टेंशन हो गई कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए कॉल कर रहा था, बाकी तुम्हारे ही पैसे हैं, जहाँ तुम खर्च करना चाहो वहाँ कर सकते हो। मेरे ही हैं लेकिन मैं उन्हें कभी किसी गलत जगह खर्च नहीं करूंगा, मुझे पता है आप नहीं पूछोगे लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। कल रात मेरे फ्रेंड गतिक को किसी ने ज़बरदस्ती शराब पिला दी और उसके साथ क्लब में गैम्बलिंग करने लगे, ये बेचारा पैसे हार गया और पैसे ना होने की वजह से इसके साथ मारपीट करने लगे। जानता हूँ जुआ खेलना गलत होता है पर ये मेरा दोस्त है और इसका कोई है भी नहीं, इसलिए मैंने उसके पैसे दे दिए। बात करते हुए अनुभव ने गतिक के कंधे पर ज़ोर से मारा जिससे वो चिल्ला पड़ा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुझे, तो फिक्र मत कर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ठीक है तुम उसका इलाज कराओ और जिस किसी ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करवाओ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, आकाश जी ने कहा। नहीं पापा मैं देख लूंगा, मैं नहीं चाहता आप इन सब में पड़े, अच्छा मैं आपको बाद में बात करता हूँ, कहकर अनुभव ने जल्दी से कॉल कट कर लिया। आकाश जी से बात करने के बाद अनुभव ने राहत की सांस ली। अपने पापा के सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बात कर रहा था और मेरे सामने शेर बनकर घूमता है, उसके फ़ोन रखते ही गतिक बोला। मैं आज भी मैं शेर ही हूँ, बस मुझे मेरा जंगल मिल जाए, अनुभव ने जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कहानी पढ़ने के बाद समीक्षा जरूर करिएगा, आपकी समीक्षा की वजह से ही कोई कहानी हिट या फ्लॉप होती है। आई होप आप कहानी को पूरा प्यार देंगे।